श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की आज तिरुभाव तिथि है और गदाधर पंडित की तिरुभाव तिथि है। तो आज दोनों महान वैष्णव का उनके जीवन चरित्र और उनके विशेष चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए विशेष योगदान क्या है, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सब लोग साथ में बोलिए, भक्ति विनोद ठाकुर की प्रणति। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। तो भक्ति विनोद ठाकुर की इस प्रार्थना में स्पष्ट होता है कि चैतन्य महाप्रभु की जो आंदोलन और उनकी जो दर्शन है, भेद अभेद तत्व और शुद्ध भक्ति योग को उन्होंने जिस प्रकार अपने आचरण और प्रचार के द्वारा स्थापित किए, उसके पश्चात उनके सिद्धांतों को सड़ गोस्वामी ने जिस प्रकार इस भूतल पर स्थापित किए, उसकी बात यदि कोई रूपानुग अनुजाई यथारूप चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरे संसार में फैलाए हैं, वो है भक्ति विनोद ठाकुर। रूपानुग बरायते, वो रूप गोस्वामी की अनुजाई में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी स्वरूप कैसे है, सचिदानंद। उनकी बाल्यकाल के नाम था केदारनाथ दत्त, परंतु उनके विशेष कार्यकलाप की दृष्टि से वैष्णव अनुजाई ने उनको सचिदानंद उपाधि प्रदान की। सचिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, अर्थात जिनकी एकमात्र लक्ष्य है भक्ति, और इस भक्ति के द्वारा ही जीव को आनंद प्रदान करने के जिनकी इच्छा है, अभिलाषा है शुद्ध भक्ति योग के द्वारा, वो है भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर 2 सितंबर 1838 रविवार के दिन आनंद चंद्र दत्त और श्रीमती जगत मोहिनी देवी की गर्भ से बीर नगर, जिसको उल्ला गांव कहा जाता है, वहां पर उनकी प्रकट हुई थी। और उनके जो वंशज है नरोत्तम दास ठाकुर की पिता राजा कृष्ण चंद्र दत्त की परिवार से हैं। ये पहले उनके वंशज बंगाल में रहा करते थे, लेकिन कुछ संपत्ति के विवाद लेकर के उन्होंने बाद में कटक स्थानांतरित हुए। तो कटक में एक छोटी गोविंदपुर अभी भी गोदावरी के तट पर है, तो वहां उनके पूर्व गांव भी हैं। अभी फकीर मोहन प्रभु उस स्थान में कुछ दिन रहा करते थे। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर की बाल्यकाल उस छोटी गांव में हुआ, परंतु समय की सापेक्षता के अनुसार हम भक्ति विनोद ठाकुर के विशेष कार्यकलाप के विषय में चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर अपने पिता माता के तीसरा पुत्र थे। उनका बड़े भाई का नाम था अभय काली और उसके बाद काली प्रसन्न दूसरे भाई का नाम, और ये तीसरा जब जन्म लिए तो देखने में इतने सुंदर नहीं थे, इसलिए उनकी दादी ने उनको कहे चलिए, ये शिव जी के द्वारा रखित हो इसलिए उनका नाम रखे केदारनाथ, ये सब काली के द्वारा रखित हैं, काली प्रसन्न और अभय काली। तो भक्ति विनोद ठाकुर का बाल्यकाल उस गांव में बीता और उनके अध्ययन ऐसे गांव की जो पाठशाला है भारंडा में होता था। तो उस समय की जो शिक्षा पद्धति के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बहुत त्रुटिपूर्ण था, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर बाल्यकाल में इतने मेधावी थे तो सभी कक्षा में उनको प्रथम ही पुरस्कार मिलता था और प्रथम स्तर में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कुछ काल तक ओडिशा में शिक्षकता की, आज भी वो स्थान है जहां पर वो प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुए थे, भद्रक। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार सामयिक धर्म को यथारूप स्थापित करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कड़ा पदक्षेप लिए, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाए। उन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जगन्नाथपुरी में नियुक्ति हुई है तो उस समय की एक घटना है। तो किसी प्रकार जय श्री श्री गोनिताय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा जीव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जीव की जय। भक्ति विनोद ठाकुर हालांकि कायस्थ परिवार में थे परंतु उनकी कार्य एक महान क्षत्रिय के रूप में है। हालांकि अर्जुन जैसे एक क्षत्रिय हैं और वैष्णव भी हैं, तो युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रिय के लिए बहुत अनिवार्य है। तो उसी प्रकार हमारी परंपरा में जितने से बड़े बड़े आचार्य हुए हैं इस धर्म की स्थापना करने के लिए, भगवान के मिशन को पूरी करने के लिए, उन्होंने संसार के जो अप सिद्धांत के साथ बहुत जोरदार लड़ाई किए हैं, उसमें से भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सचर ठाकुर और श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनकी कृति अनवद्य है। जब केदारनाथ दत्त जगन्नाथपुरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए तो उस समय अनेक अपसंप्रदाय था, आउलू बावलू करता भजा नाड़ी जाति गोसाई सखी भेकी, इसी प्रकार 13 संप्रदाय अपसंप्रदाय को भक्ति विनोद ठाकुर रिकॉग्नाइज किए कि वास्तविक ये लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को यथारूप पालन नहीं करते हैं और यथारूप शिक्षा नहीं देते हैं। उस 13 अप्र संप्रदाय में एक अति बड़ी संप्रदाय, जिन संप्रदाय में अग्रगण्य थे जगन्नाथ दास, उड़ीसा में ये प्रसिद्ध भागवत लेखक के रूप में जाने जाते हैं अति बड़ी जगन्नाथ दास। तो ये चैतन्य महाप्रभु के समय में थे, तो चैतन्य महाप्रभु उस अति बड़ी जगन्नाथ दास को कहे कि तुम हरिदास ठाकुर का शरण लो और उनकी शिक्षा को तुम अनुसरण करो। परंतु ये अति बड़ी जगन्नाथ दास वो चैतन्य महाप्रभु को अवहेलना किए और बाद में उन्होंने मायावादी सिद्धांत के द्वारा दूषित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु की कुछ समय के बाद, लगभग 300 साल के बाद, इस अति बड़ी संप्रदाय की एक व्यक्ति जिनका नाम था विशिकेशन, जो अपने को महाविष्णु के अवतार के रूप में घोषित करता था और सभी लोग उनको ही मानते थे, कहा कि हां ये भगवान है, क्योंकि उनके पास कुछ योग शक्तियां थी। जब भक्ति विनोद ठाकुर इस घटना को सुने और उस समय जगन्नाथपुरी के पास एक स्थान है खंडनी बिसेश्वर, ये स्थान है, वहां पर एक उन्होंने मंदिर बनाए जंगल के अंदर, और उनके पास कुछ योग की शक्ति था जिसके प्रदर्शन करके लोगों का बीमारी और लोगों की कष्ट को दूर करता था, दारिद्रता को दूर करता था। और उन्होंने उस समय पूरी राजा के पास एक पत्र लिखे और कहा कि मेरे पास कुछ स्त्रियों को भेजो जिनके साथ मैं रासलीला करूंगा और मैं अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शन करूंगा, मैं किस प्रकार कृष्ण और विष्णु हूं। तो कुछ निर्बद लोग राजा को भी इसी प्रकार करने के लिए प्रेरित की कि हां ये वास्तविक कलिजुग में साक्षात भगवान है। परंतु जब ये स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया तो उनकी पतियों के साथ और समाज के उस समय बहुत बड़ा व्यवधान आ गया, सब जगह लोगों के अंदर अशांति और लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी खो दिए। ती घटना दिन पर दिन बढ़ते रहा और उस समय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे मिस्टर रेवेन्सा, तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को कहे कि आप इस घटना को थोड़ा रिसर्च करो कि वास्तविक घटना है क्या। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन संध्या समय में उस जंगल के अंदर गए और अकेला, और उस समय वो जोगी बहुत बड़ा हवन कुंड जला करके तो किसी को आशीर्वाद देता था तुमको धन प्राप्त हो जाए, और किसी को देखते देखते ही कुछ राख दे देता था और वो शरीर पर लगाते ही उसका रोग दूर हो जाता। और जब भक्ति विनोद ठाकुर उस जंगल में प्रवेश किए उनको देख करके ये जोगी खड़ा हो गया और कहा अच्छा बाबू तुम मेरे पास आए हो, अच्छा ठीक है, हां इस घटना को तुम ही साब्यस्त कर सकते हो कि मैं कैसे भगवान विष्णु हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर निर्भीकता से उनको उत्तर दिए, अगर यदि आप भगवान महाविष्णु हैं तो आप जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं रहते हो। तो उन्होंने कहा अरे ये जगन्नाथ की बात कर रहे हो, ये तो नकली लकड़ी है, मैं साक्षात भगवान हूं और चैतन्य देव मेरी सच्चे भक्त हैं, क्योंकि ये जो अति बड़ी संप्रदाय के लोग यही कहते थे कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु को नकल करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो जाएंगे, और ये उसकी अग्रणी था, वो सोचता था कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा मैं अपने को ही भगवान के रूप में साब्यस्त कर सकता हूं। तो इसलिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को कहा अरे भक्ति विनोद मेरी अवतार किस लिए हुआ है पता है तुमको। भक्ति विनोद ठाकुर कहे साधारण जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है। तो जोगी कहता है कि इसलिए मैं तुमको बुलाए हूं, तुम मेरे ऐश्वर्य को नहीं देखे हो, और मेरे अवतार के प्रयोजन क्या है, मैं भारत से यूरोपियों को भगाने के लिए और अपने देश को आजाद करने के लिए, और सारे मलेच्छ जवन को मेरी शक्ति से मैं सबको मार डालूंगा और केवल भारत में हिंदू ही बचा रहेंगे। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर को यह सहन नहीं हुआ कि जगन्नाथ को एक का लकड़ी का मूर्ति कहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर सो लोगों को देखें, सभी लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है भगवान है, सब जयकार दे रहे हैं, और ये जोगी कुछ अपने योग शक्ति से उनको कुछ पुरस्कार देता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि देखो इस प्रकार दांभिकता, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, ऐसे बड़े बड़े असुर अपने को भगवान के रूप में साब्यस्त करने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु ये असफल रहे और तुम्हारे भी उसी प्रकार विनाश होगा जिसी प्रकार शिशुपाल को हुआ था। ये बात सुनकर के जोगी ने हंसने लगा, कहा कि भक्ति विनोद मेरी बात आप सुन लो, अगर यदि आप मेरी बात मान लोगी मैं पूरा इस ओडिशा का, उत्कल खंड का तुमको क्या बना दूंगा, चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्या होता है, राज्यपाल, राज्यपाल बना दूंगा और मेरी शक्ति से तुम्हारे सब जगह विजय होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहेगी तो तुम थोड़े समय प्रतीक्षा करो। तो उसके बाद दिन पर दिन ऐसे मामला बढ़ते रहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन दो पुलिस इंस्पेक्टर और साथ में 100 कनेस्टेबल और लोग पुलिस को लेके गए। तो चार तरफ पुलिस को देख करके और सबके हाथ में देखे राइफल हैं, तो सब लोग डर के भाग गए। और यह घटना सबको पता चला कि सरकार ने अभी भगवान को अरेस्ट करने वाले हैं। तो वीसी केसन ने सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखा और नीचे जमीन पर बैठ गया। तो सब लोग जब उनके अनुजाई छोड़ के चल गए तो वीसी केसन ने कहा, अच्छा बाबू तुम फिर आ गए हो, देखो मैं तुमको दूसरी बार अनुकंपा कर रहा हूं और जाओ तुम आज ही निष्पत्ति लो कि मैं ही भगवान हूं और फिर उसके बाद मेरे कार्य को देखो। तो इसे कहते हुए उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने बाल को घुमाए और उनसे बड़ा बड़ा चिंगारियां निकलने लगा और साथ साथ बड़े बड़े बिसेला सांप भी आकाश में उड़ने लगे। तो कुछ पुलिस तो भयभीत हो गए, अरे क्या किया जाए। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर कितने निर्भीक हैं, वहां खड़ा रहे और फिर उन्होंने दो कनेस्टेबल को आदेश दिए, जाओ तुम दो बैलगाड़ी लेके आओ। और जिस समय उन्होंने बैलगाड़ी लेने के लिए गए तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि देखो आपके मत को आप वापस ले लो, नहीं तो परिस्थिति बहुत भयंकर होगा। तो जोगी ने कहा, अच्छा तुम मेरी शक्ति को नहीं देखे हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि तुम्हारा शक्ति देखने के लिए हम जगन्नाथपुरी में एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे, आप अपने शक्ति को वहां पर दिखाना। तो इन्हें बहुत गुस्सा हुआ, जोगी ने उन्हें कहा मैं कभी नीलांचल नहीं जाऊंगा, पुरी में तो नकली भगवान, मेरी असली स्वरूप को दर्शन करो और सब लोग को यहीं बुलाओ मेरे दर्शन करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहें कि कलयुग में महाविष्णु पुरी में ही निवास करते हैं, अगर यदि आप महाविष्णु हैं तो चलिए पुरी में रहिए, आपके लिए बहुत सुंदर क्षेत्र है। तो वो जोगी ने अपने बात पर अटल रहा। उस बीच में जब दो बैलगाड़ी आ गया तो भक्ति विनोद ठाकुर 7 कनेस्टेबल को आदेश दिए कि इसको बांध दो और बैलगाड़ी का पीछे रख दो। तो उन्होंने कहा, हां भगवान कभी भक्तों का नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको रक्षा करते हैं, इस वचन को पालन करने के लिए मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भक्त जो चाहते हैं मैं उसको पूरा करता हूं। और उन्होंने गीता के श्लोक कहा, नमे भक्त प्रणश्यति, यदि मेरी भक्त चाहते हैं कि मैं पूरी जाऊं ठीक है मैं चलता। और जब उन्होंने बैलगाड़ी के पीछे बैठ गया तो भक्ति विनोद ठाकुर पीछे पीछे वो भी बैलगाड़ी में जा रहे थे और लिखते रहे। उन्होंने बहुत सारी अपने जोग शक्ति को प्रयोग किया भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर का कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद पुरी में उन्होंने एक एकांत स्थान में रखे 7 दिन तक। उसके बाद जब उनकी एग्नेस्ट में केस डायर किया गया तो सब उनकी अनुजाई आकर के बहुत चिल्लाने लगे, हजार अनुजाई, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर 2 मुसलमान मोहम्मदियन रक्षक, 3 दर्जन 36 कनेस्टेबल और 72 पुलिस को लगा करके चार तरफ उस जोगी के लिए बहुत एक बड़ा कर्डन बनाया। तो फिर ये जोगी को 18 दिन तक जेल में रखा गया और उस जेल के अंदर उन्होंने बहुत सारी अपने जोग शक्ति को प्रदर्शन करके लोगों के सामने भगवान के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने पहला 5 दिन में उन्होंने भोजन और पानी छोड़ दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको समझाए, देखो तुम जिस प्रकार धारणा में रहे हो तो निश्चित रूप से विनाश हो जाओगे और समाज की सुरक्षा करने के लिए, लोगों के अंदर धर्म की भावना जागृत करने के लिए इस प्रकार मत को तुम हटा लो, यह अच्छा होगा। परंतु एक बात भी नहीं सुना उन्होंने, उल्टा भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर क्रोध प्रदर्शित किया। तो 15 दिन में ऐसा हुआ, उनकी भक्ति विनोद ठाकुर की 7 बेटे और 1 बेटी थी, उनका नाम था कादम्बिनी। तो कादम्बिनी 7 साल की थी और अकस्मात जब जोगी का 15 दिन हुआ था जेल में, तो उनको बहुत बड़ा बुखार हुआ और बहुत सारी वैद्य और डॉक्टर आए, कोई उनको ठीक नहीं कर पाए। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर जब घर आकर के देखे कि इस अवस्था है और इतनी ताप बढ़ गया है, मतलब किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकता है, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना किए कि आपकी एकमात्र शक्ति है जो जीव को जिलाता है और मारता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने डायरी में लिखते हैं कि रात तक उनकी मां भगवती बहुत चिंतित थी बेटी का क्या होगा, परंतु सवेरे 8 बजे उनके बेटी को देखे आंगन में अपने सहेली के साथ खेल रही है। तो सब पड़ोसी के लोग आश्चर्य हो गए, ये कैसे संभव हुआ। सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिए, परंतु ये कैसे अकस्मात ठीक हो गया। और वो जोगी ने अपने जोग शक्ति से सब जगह आग फैला दिया, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में आग लग गया और हैजा बीमारी फैल गया। तो लोग सोचे कि भक्ति विनोद ठाकुर बहुत गलत कर रहा है, ये भगवान को जेल में रख दिया इसलिए आज सबकी ऐसे हालत है। तो सब लोग चिल्लाने लगे और पत्र पत्रिका में निकाल दे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो कर रहे हैं ना बहुत गलत है और ये समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझा बना है, हमारे भगवान को बाहर निकाल दे। तो 16वां दिन ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर को देख करके जेल के सामने कहा, भक्ति विनोद अभी देखो ये महाविष्णु की शक्ति को तुम देख लो, तुम 18 दिन में जब जजमेंट देने के लिए जाओगे, अपने ये फैसला करोगे, उसी दिन तुम्हारा ही मौत होगा, और जाओ घर जाकर के देखो तुम्हारा क्या स्थिति हुआ है और अभी सुधर जाओ। भक्ति विनोद ठाकुर हंसने लगे, हे अच्छा तुम्हारा जोग शक्ति सिर्फ किसमें है, बाल में है। तो भक्ति विनोद ठाकुर घर आकर के देखे, उनकी पत्नी भगवती देवी का भी उसी प्रकार हालत है, बहुत शोचनीय स्थिति है। तो भक्ति विनोद ठाकुर घर में बैठ कर की उन्होंने भगवान को स्मरण करने लगे और भागवतम ग्रंथ को ला करके उन्होंने पूजा किए और ये भागवतम की श्लोकों को दोहराने लगे। श्रुणतम सुकथम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो हि अभद्राणी विधुनाति श्रुहुसताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके तदा रजस्तमो भावा कामालोभादयस्य चेतं वितारानाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया कियन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरे। ऐसे जब प्रार्थना उन्होंने करने लगे तो तुरंत एक आध्यात्मिक शक्ति का आभास हुआ और उनकी पत्नी भगवती देवी तुरंत अपने आंख खोल दी। तो 16 दिन उनके पत्नी भगवती देवी ठीक हो गए। 17 दिन उस जोगी के पास फिर भक्ति विनोद ठाकुर गए और कहे, भक्ति विनोद, काल तुम्हारा आखिरी दिन है। और भक्ति विनोद ठाकुर जब लौट करके आए तो कोट को निकाल दिए, जो कोट पहने हुए थे मजिस्ट्रेट कोट, और देखे कि उनकी दाहिनी तरफ में पेट में बहुत दर्द हो रहा है और रात 12 बजे और उनका दर्द बढ़ने लगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर सोचने लगे, मैं क्या करूं, लेकिन उनकी एकांत आश्रय है जगन्नाथ के प्रति, उन्होंने अपने विचार नहीं बदले। सवेरे 9 बज गए, कोर्ट की समय हो गया, तो भक्ति विनोद ठाकुर के पास चलने की शक्ति नहीं है, उठ नहीं पाए। तो फिर उन्होंने किसी के हाथ में पत्र में लिखे कि मेरे लिए पालकी भेजिए, और भक्ति विनोद ठाकुर कोर्ट में पालकी में गए और उन्होंने फैसला दिए। इस अवस्था में ये जोगी ने इस सरकार के विरुद्ध में बहुत अपवाद फैलाए हैं और जनता को उन्होंने बहुत कष्ट दिया है और समाज के धर्म को बहुत नष्ट किए हैं, इसलिए उनको 18 महीना तक सश्रम कारादंड, बहुत कठोर दंड मिलना चाहिए और 18 महीना तक उनको जेल में काम करना चाहिए। तो ये सुनकर कि जितने इस विषिकेशन की फॉलोअर्स थे सब उद्विग्न हो गए और चिल्लाने लगे, ये गलत फैसला है। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर इस निर्णय देने के बाद, भक्ति विनोद ठाकुर को चिकित्सा करने के लिए कुछ डॉक्टर आए थे, भक्ति विनोद ठाकुर मना करते, परंतु ये जो डॉक्टर थे तो उनका हाथ में क्या था, सीजर था। तो उन्होंने कैंची लेकर के, सीजर लेकर के उन्होंने क्या किए, उस जोगी का बाल काट दिए, पूरा सेव कर दिए। और जो ही उनका बाल काट दिए, जेल के अंदर उन्होंने गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। कुछ दिन पहले सब लोग कह रहे थे, देखो ये जोगी ने 15 दिन तक कुछ अन्न जल भी नहीं लिया, फिर भी अपने पास कितनी शक्ति है। लेकिन जियो ही वो नीचे गिर गया तो सभी अनुजाई ने छोड़ के चल गए। तो सब लोग कहने लगे, ये था ढोंगी जोगी था, ये भ्रष्ट जोगी है। तो सब छोड़ के चल गए। तो फिर उस जोगी ने 3 महीना तक वो पूरी जेल में रहे। उसके बाद उनको जो मेन जेल है मेदिनापुरी, कलकत्ता और ओडिशा के बीच में मेदिनापुर, तो उस जेल में उनको रखे। तो वो जेल में जब उन्होंने 22 दिन बिताए तो उनको बड़ा शर्म आया कि मैं इतना बड़ा भगवान था और मुझे जेल में कष्ट मिल रहा है। इसलिए उन्होंने 20 पी लिए वो जेल के अंदर, खत्म हो गए। तो इसी प्रकार फिर उनकी अनुजाई एक थे, वो अति बड़ी संप्रदाय की, अपने को कहता था ब्रह्मा, हाँ वो जाजपुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास गए, अच्छा तुम सृष्टि करते हो? तो फिर भी उसको भी उसी प्रकार जेल में रख करके उनको दंड दिए। और एक था, उनका नाम क्या, सुश्रुम। तो उन्होंने कहा कि मैं बलराम के अवतार हूं और कादंबरी फीकर की स्त्रियों के साथ उन्होंने कहा भी मैं भी जमुना में कैली करूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको जब अरेस्ट किए तो उन्होंने कहा मेरे क्रोध आप नहीं देखे, वो क्रोध से ही कौरव वंश को नष्ट कर दिए थे, अब मेरे क्रोध देखोगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे ठीक है, तुम्हारा क्रोध हम जेल में देखेंगे, चलिए। तो इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जो अपसंप्रदाय था और चैतन्य महाप्रभु की जो शुद्ध भक्ति की परंपरा में जो प्रतिबंधक था उसको दूर किए। तो ये बात जो उनकी कमला प्रसाद उनके तृतीय पुत्र उस जीवनी में लिखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर की ये जीवन आदर्श व चरित्र है कि एक प्रकार समाज को सुधारने के लिए और दूसरा अपने व्यक्तिगत जीवन का आदर्श क्या है, त्यागपूर्ण। इसलिए उनको कहा जाता है सतमा गोस्वामी, सेवेंथ गोस्वामी, कि उन्होंने सरकारी कार्य करते हुए भी अपने जीवन चर्या कितने श्रृंखलित ढंग से व्यवस्थित किए थे। दिन में सिर्फ 4 घंटा सोते थे और प्रतिदिन उन्होंने लेखनी में व्यस्त रहते थे। और उनकी एक अद्भुत कृति ये है कि उन्होंने प्रत्येक घटना को आध्यात्मिक स्तर से विचार करते थे और उसकी फैसला भी उसी प्रकार करते थे। अभी हम देखते हैं बड़ा बड़ा केस बहुत दिन तक पेंडिंग रहता है, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर के समय बड़े बड़े फाइल उन्होंने 4 घंटा में इसको फैसला दे देते हैं, हाँ इसको ऐसे ही दंड देना चाहिए। उनके चेहरा को देखकर कि व्यक्ति निर्दोष है कि दोषी है, भक्ति विनोद ठाकुर फैसला कर लेते। उनके पास ऐसे अद्भुत शक्ति था। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर सरकारी कार्य से अवसर प्राप्त किए तो उन्होंने कुछ दिन चैतन्य महाप्रभु के जो जन्मस्थली है जोगपीठ का उन्होंने तलाश कर रहे थे, जो सुरभि कुंज है अभी, तो वहां उनकी भजन कुटीर था। तो प्रतिदिन उन्होंने भागवत के ऊपर प्रवचन करते थे, जगन्नाथ दास बाबा जी आदि कुछ गिने चुने वैष्णव आते थे और भक्ति विनोद ठाकुर लगभग 2:35 में जगते थे। उन्होंने बहुत अर्ली सो जाते थे और मात्र 4 घंटा रात्रि में विश्राम करते थे। तो जब 2:30 जगते थे तो वो सुरभि कुंज कि उनके जो भजन स्थल से वो देखते थे बाहर एक बहुत ज्योति प्रकट होता है और उस समय वो खोज में थे कि चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक जन्मस्थान कहां है। अभी जो हम देखते हैं कि जो नवद्वीप के उस तरफ जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान कहते हैं, तो वो वास्तविक नहीं है, लेकिन इस अपसंप्रदाय लोग ने उसको कहा है कि यही चैतन्य महाप्रभु की मूल जन्म स्थान, मूल पीठी है। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जो लगभग 90 साल के हो गए थे, उनकी कमर लचक गया था, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको टोकरी में रख करके अपने सिर पर लेके चले और यही खोज कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक जन्मस्थान कहां है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद बहुत प्रकार के अपसिद्धांत फैल गया है, उनकी लीला को नकल करने लगे, उनकी गुण को नकल करने लगे, तो इसलिए सही सिद्धांतों को स्थापन करने के लिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के सहारा लिए, और जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज पहुंचते ही वहां टोकरी से कूद पड़े और कहे यही है गौरांग जन्मस्थान, और वहां नाचने लगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसके बाद उस चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान व जन्मपीठ को बनाने के लिए तो कलकत्ता शहर में सभी बड़े बड़े उद्योगपति के पास सिर्फ 1 रुपया ही, प्रत्येक व्यक्ति से 1 रुपया ही कलेक्शन करते थे, और उन्होंने उस जोगपीठ मंदिर को निर्माण किया भक्ति विनोद ठाकुर। तो उसी प्रकार हम भक्ति विनोद ठाकुर अपने अंतिम दिन तक उन्होंने जगन्नाथपुरी में जब मैजिस्ट्रेट रहे और बाद में उन्होंने नवद्वीप में जब आकर के भजन की, उनकी एकमात्र लक्ष्य था कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा निर्मित शुद्ध भक्ति योग की पंथा को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, और ये सोचते थे कि एक ऐसे ही योग्य पुत्र होना चाहिए, भगवान ऐसे योग्य व्यक्ति को भेजना चाहिए जो कि चैतन्य महाप्रभु की इस धर्म पथ को आगे बढ़ाए। तो इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए जगन्नाथ देव से उन्होंने कृपा याचना की और जगन्नाथ की विशेष कृपा के रूप में उनको प्राप्त हुआ था बिमला प्रसाद, जो उनकी पंचमा पुत्र थे, और उन्होंने सिंह की तरह उन्होंने इस सिद्धांत को प्रचार किए, इसलिए उनको सिंह गुरु भी कहा जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने बहुत प्रकार से अपने चरित्र को ठीक सुदृढ़ रूप में निर्माण करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी पथ प्रदर्शन किए। उन्होंने पहले कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे पास ज्ञान की घमंड है, तुम गौर किशोर दास बाजी से शिक्षा ग्रहण करो और दीक्षा ग्रहण करो। हालांकि उनको नरसिंह दीक्षा दिए थे भक्ति विनोद ठाकुर, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इतनी विद्वान बन गए तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे नहीं, तुम्हारा इस प्रकार विद्वता अंदर से तुम्हारा ही भक्ति को ही नष्ट करेगा, तुम जाओ अकिंचन गौर किशोर दास बाबाजी से तुम दीक्षा ग्रहण करो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितनी नम्रता से गौर किशोर दास बाबाजी से सेवा किए और फिर उनसे दीक्षा ग्रहण किए। आज गदाधर पंडित की भी तिरोभाव तिथि है, तो गदाधर पंडित श्रीमती राधारानी के अवतार हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए अपने 100 पार्षदों को लेकर के, 100 पार्षद स्वयं धाम सह अवतारी, तो गदाधर पंडित जो राधारानी के अवतार हैं, तो उन्होंने बाद में प्रकट हुए, वो सब नवद्वीप में ही प्रकट हुए थे उनके पार्षद, कुछ उत्कल क्षेत्र में भी प्रकट हुए, और विशेष करके उनके जितने पार्षद हैं नवद्वीप व बंगाल में ही प्रकट हुए, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, और कुछ पार्षद दक्षिण में प्रकट हुए। तो गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु क्षेत्र संन्यास दिए थे और जगन्नाथपुरी में उनको ये सेवा दी थी, प्रतिदिन भागवत पाठ करना, और गदाधर पंडित भागवतम के श्लोकों को विभिन्न राग से आवृत्ति करते थे, बहुत सुंदर सुंदर राग से। और चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन, उनकी नियम था सनातन रूप गोस्वामी को और हरिदास ठाकुर को दर्शन करके संध्या समय में उन्होंने गदाधर पंडित से भागवतम श्रवण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में निकले तो गदाधर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने के लिए चाह किए। तो चैतन्य महाप्रभु कहे, गदाधर मैं तुमको क्षेत्र संन्यास दिया हूं, तुम इधर ही रहो। परंतु गदाधर पंडित नहीं सुने तो चैतन्य महाप्रभु के साथ चलने लगे। तो आलारनाथ की ओर बढ़ने लगे चैतन्य महाप्रभु, गदाधर जगदानंद मुकुंद। तो ऐसे कुछ गिने चुने पार्षद और बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण सेवक था चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु कहे, गदाधर तुम नीलांचल आपस चल जाओ और वही तुम्हारे लिए धर्म है, क्षेत्र में रहना क्षेत्र सन्यासी की धर्म है। तो गदाधर पंडित कहे, प्रभु आप जहां रहते हैं वही धाम है, वही क्षेत्र है। चैतन्य महाप्रभु कहे, गदाधर फिर भी लौकिक धर्म को निभाना चाहिए, नहीं तो लोग क्या सीखेंगे। चैतन्य महाप्रभु आलानाथ के दर्शन करके गदाधर को फिर देखे, गदाधर तुम जाओ। गदाधर पंडित ने कहे, प्रभु मेरे क्षेत्र सन्यासी भाड़ में जाए परंतु मैं आपके संग नहीं छोड़ सकता। चैतन्य महाप्रभु कहे, अच्छा गदाधर तुम मुझसे प्रीति करते हो ना, प्रीति का क्या लक्षण है? जो प्रेमी चाहे उसी के अनुसार करना चाहिए। ये सुनते ही गदाधर पंडित को लगा कि वज्रपात हुआ, उन्होंने तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े कि महाप्रभु नहीं चाह रहे कि उनके साथ मुझे लेने के लिए। और जिस समय गदाधर पंडित ने गिर पड़े, चैतन्य महाप्रभु उसी समय ही उनको छोड़ के चल गए। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, ये प्रीति की रीति समझना बहुत कठिन है। कृष्ण क्यों गोपियों को छोड़कर के, ब्रजवासियों को छोड़कर के द्वारका चल गए? कहते ये जो गोहिया रहस्य को समझ जाता है तो चैतन्य महाप्रभु की अवतार का प्रयोजन को समझ पाएगा और उनके दिव्य लीला को समझ पाएगा। इसलिए भगवान को लीला को समझने के लिए साधक को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए और ये बुद्धि भगवान ही देते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरी इस तत्व को जान लेता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो बेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्चन। परंतु ये तत्व को सबको समझ में नहीं आएगा। मनुष्याणंग सहस्रेशु कश्चि जतत सिद्ध जततंग अपि सिद्धानां कश्चिन मांग बेति तत्वतः। कोई बिरला ही मेरे तत्व को समझता है और वे कौन समझता है? ऐसे कोई प्रेमी भक्त, भक्त्या मांग अभिजानाति जाबन जच्चास्मी तत्वतः, वही तत्व तो समझता है। इसलिए हम भगवत तत्व की चर्चा करते हैं, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघस्य जायते। ये तत्व के निर्जास होता है ये श्रीमद् भागवतम आदि चर्चा करने से, उस लीला को चर्चा करने से। तो विशेष करके ये जो हमारे हरे कृष्ण आंदोलन व हरे कृष्ण मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कलयुग में बहुत बड़े रूप में प्रचार प्रसार करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऐसे ऐसे अनुयायी को भेजे हैं और सभी अनुयायी के अंदर श्री कृष्ण स्वयं शक्ति संचारित की। जगत तारिते शक्ति जने जने धरे। तो जो आचार्य हैं तो उन्होंने इस धर्म को प्रचार करने के लिए स्वयं कृष्ण की शक्ति को ही धारण करते हैं, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। इसलिए आज भी जो इस कृष्ण चिंतन आंदोलन फैल रहा है जंगल के आग की तरह, इसके पीछे किसका है देन? इसे भगवान की शक्ति जो आचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। और भगवान स्वयं कह रहे हैं आचार्य मां अभिजानियत न अभमन्येत कर्हचित। ऐसे आचार्यों को सामान्य नहीं समझना चाहिए, वो ही वास्तविक मेरी शक्ति के स्वरूप हैं। तो आज ऐसे महान आचार्यों की, दोनों महान आचार्यों की तिरोभाव में प्रत्येक साधक अंदर से ही इस प्रकार जांचना करना चाहिए। विशेष उनकी प्राकट्य और तिरोभाव तिथि में उन्होंने के विशेष मर्ष, जैसे हम व्यास पूजा मनाते हैं कि गुरु की कृपा प्राप्त होने के लिए, ऐसे तो गुरु हमेशा ही कृपा देते हैं। जैसे कृष्ण नित्य हैं, परंतु उनकी जब हम जन्माष्टमी उत्सव व गौर पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं तो उस दिन विशेष एक विशेष कृपा मिलता है। तो इसको कहते हैं परंपरा और समर्पण। तो परम को प्राप्त करने के लिए उसके फल रस को फॉलो करना चाहिए, इसको कहते हैं परंपरा। और इस परंपरा में क्या प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु, कहते समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम। तो समर्पण मतलब ऑफरिंग, एक दूसरे को हैंडल करता है, अर्पण करता है। तो यही परंपरा सिस्टम बा समर्पण सिस्टम। अगर यदि हम समर्पित हैं तो ये धर्म को दूसरे को देना चाहिए, सिखाना चाहिए। और यही चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, जारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। तो केवल हम उनके जीवन चरित्र को सुनना नहीं, बल्कि उनके आदर्श को विचार करके फिर जो उपदेश बा जो आदेश हमको दिए हैं उसको हम दैनंदिन जीवन में आचरण करना चाहिए और उसको प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे महान आचार्य से हम प्रार्थना करना चाहिए कि कृपा बरसाएं और हमको इसी प्रकार दृढ़ भक्ति योग में रखें और उनकी भगवान की जो माया से हमको बचाए के रखें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरभाव महामहत्सव की जय। श्री श्री गदाधर पंडित तिरभाव महामहत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण।